पेश है आज के मुख्य समाचार विशारी जैन के साथ। बढ़ते कोरोना प्रकोप के बीच फेडरल सरकार ने फिर किया बूस्टर खुराक लेने का आग्रह। भारत में आज से शुरू होगा बजट सत्र। और शरद ओलंपिक्स के ऑस्ट्रेलियाई दस्ते के सदस्य बीजिंग में पाए गए कोरोना संक्रमित। और अब खबरें विस्तार से। नॉर्दर्न टेरिटरी में एल्क्लो आइलैंड के दूर दराज के समुदाय गाविनविनकू में 7 दिन का लॉक इन लगा दिया गया है। अचानक बढ़े कोरोना मामलों के चलते ये कदम उठाया गया है। ये लॉक इन जिसमें स्थानीय लोग टापू पर तो घूम सकते हैं लेकिन निवासी एल्को आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते, 5 फरवरी तक चलेगा। इससे पहले इलाके में इससे कड़े प्रतिबंध लागू किए गए थे। यह तब आता है जब इलाके में 10 जनवरी के बाद से 319 कोरोना मामले सामने आए हैं, जिनमें से 285 अब भी सक्रिय मामले माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री माइकल गनर का कहना है कि ये सारे फैसले समुदायों के साथ चर्चा करने के बाद ही लिए गए हैं।
Well, I don't know if we use the phrase lock-in, so they might be new to them, the phrase lock-in, but we've been talking to them about how we might be able to do different travel rules, and so this is definitely part of our conversations with them. I know the commission mentioned earlier that the concept of security Landcats put on board the idea of them employing some security, and the commission said, well, if that was the case, this is how it would work. So we've been having those kinds of conversations.
उधर न्यू साउथ वेल्स में आज कोरोना के चलते 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राज्य में 13,026 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 5,664 मामले रैपिड एंटीजन टेस्ट में सामने आए हैं। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ का कहना है कि 2,779 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 185 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान में कुछ चिंताएं सामने आ रही हैं। हालांकि 94% 16 साल से अधिक के निवासियों को टीके की 2 खुराकें तो मिल चुकी हैं, लेकिन 39.4% लोगों ने ही बूस्टर खुराक ली है। वहीं विक्टोरिया में आज 8 कोरोना मृत्यु दर्ज की गई है। राज्य में आज 10,053 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। अस्पताल भर्तियों की बात करें तो 873 संक्रमित अस्पताल में हैं, जिनमें से 102 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। वहीं राज्य के 93% 12 साल और उससे अधिक के व्यक्तियों को टीके की 2 खुराकें प्राप्त हो चुकी हैं, जबकि 38% ने बूस्टर खुराक भी ले ली है। दूसरी ओर तस्मानिया में आज 504 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। ये कल आए 594 मामलों से एक बेहतर स्थिति है। राज्य में 16 कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं और एक गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। तस्मानिया में 12 साल और उससे अधिक के 95.02% लोगों को टीके की 2 खुराकें प्राप्त हैं, जबकि 39.11% 18 साल और उससे अधिक के वयस्क बूस्टर खुराक भी पा चुके हैं। आज से राष्ट्रीय स्तर पर बूस्टर खुराक की समय अंतराल अवधि 4 महीने से घटकर 3 महीने हो गई है। फेडरल सरकार अब देश भर में निवासियों से टीके की तीसरी खुराक लेने के आग्रह को तेज कर रही है। इस बात के स्थापित प्रमाण मिले हैं कि टीके की 3 खुराकें 2 खुराकों से अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। फेडरल स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि कम से कम 49% ऑस्ट्रेलियाई अब बूस्टर खुराक के लिए पात्र हैं और उन्हें ये खुराक लेने में देर नहीं करनी चाहिए।
We know that there are approximately 18 million doses available and we have the capacity to inoculate everybody who is eligible and we would encourage people to come forward. The simple message is if you haven't previously been eligible, or you are eligible and you haven't come forward for your first dose, or your second dose, or your booster, now's the time. Please don't wait.
गठबंधन सरकार ने न्यूज पोल के उन रुझानों को गंभीरता से नहीं लिया है जिनमें ये दिखता है कि फेडरल चुनावों के कुछ महीनों पहले ही सरकार के लिए समर्थन और भी कम हो गया है। द ऑस्ट्रेलियन अखबार द्वारा किए गए न्यूज पोल सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि 2 पार्टी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 56-44 के अनुपात से विपक्ष गठबंधन से आगे चल रहा है। यह गठबंधन सरकार का सितंबर 2018 से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। कोषाध्यक्ष जोश फ्राइडनबर्ग ने एबीसी से कहा है कि सरकार को अभी से ही हारा हुआ समझ लेना जल्दबाजी होगी।
Many political obituaries were written ahead of the 2019 election, and many false prophecies were made by those in the media, dare I say it, and our political opponents, and they turned out to be wrong. So no one should get ahead of themselves.
वहीं विक्टोरिया में आज प्रवासी और शरणार्थी पृष्ठभूमि के बुजुर्गों के लिए उपलब्ध सहयोग के मामले में होने जा रही संसदीय जांच की पहली सार्वजनिक सुनवाई होने जा रही है। इस जांच समिति के पास लगभग 50 निवेदन आए हैं। द कमिश्नर फॉर सीनियर विक्टोरियंस जेरार्ड मंसूर ने आज सुबह कहा कि उम्र के आधार पर भेदभाव, बुजुर्ग और नौजवान विक्टोरियाइयों में डिजिटल ज्ञान का फर्क, मानसिक स्वास्थ्य और बुजुर्गों का उत्पीड़न विविध समुदायों से आने वाले बुजुर्ग विक्टोरियाइयों की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उनका कहना है कि बुजुर्गों का उत्पीड़न इन सब में सबसे बड़ी और गहन समस्या है।
All the people from culturally diverse communities can face additional challenges to recognizing and reporting abuse because of language barriers, cultural norms and expectations.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं कि अमरीकी सेना के हटने के बाद तालिबान ने कई अफगानी अधिकारियों, सैन्य बल अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शक्तियों की सहायता करने वाले लोगों की हत्या कर दी है। ये हत्याएं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति को पेश की एक रिपोर्ट में दर्ज की गई हैं। उनकी रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि तालिबान बदले के लिए हत्याएं कर रहा है, जिससे देश में रह रहे 49 मिलियन लोगों की जीवन परिस्थितियां बिगड़ गई हैं। उत्तरी आयरलैंड में आज राजनीतिक नेताओं और ब्लडी संडे शूटिंग में मारे गए लोगों के परिवारजनों ने इस हत्याकांड के 50 साल पूरे होने पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 1972 में ब्रितानी सैनिकों ने अपने अधिकारों के लिए निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी थीं, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे। 45 मिनट चली श्रद्धांजलि सभा में इन सभी को याद किया गया। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने अपने संबोधन में कहा कि
As we listen to their names being recited with deep sadness today, we remember them and those tragic events not simply as history on a page, but as part of the living memory of so many of the people of this city and indeed of this island. Just as the families of those lost that day have done throughout their long years of campaigning, we remember too all of the families who lost loved ones to violence during the Troubles.
वहीं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की कोरोना जांच नेगेटिव आ गई है। सुश्री आर्डन ने रविवार को परीक्षण लिया था। वे ऑकलैंड की फ्लाइट में एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गई थी। हालांकि एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि स्वास्थ्य सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री मंगलवार तक एकांतवास में रहेंगी। और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,09,918 नए मामले सामने आए हैं। ये कल के मुकाबले में 10.4% की गिरावट है। एक दिन पहले कोरोना के 2.34 लाख मामले सामने आए थे। साथ ही देश में सक्रिय मामलों में भी कमी देखी गई है। सक्रिय मामले घटकर 18,31,000 के करीब रह गए हैं, जबकि एक दिन पहले ये आंकड़ा 18,84,000 के करीब था। दूसरी ओर भारतीय संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज यानी 31 जनवरी से हो गई है। इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी दिन वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक 1 फरवरी को सुबह 10:10 पर होगी। केंद्रीय बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण देता है। बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्त का लेखा जोखा रखता है। ये वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय घटना है और इस पर उद्योगपतियों और निवेशकों की उत्सुकता के साथ नजर बनी रहती है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलिया डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.43 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 70 सेंट थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया के शरद ओलंपिक जत्थे के एक सदस्य जो बीजिंग पहुंचने पर कोरोना संक्रमित पाए गए थे, अब जांच में नेगेटिव आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये अनामित व्यक्ति एक खिलाड़ी हैं जो एयरपोर्ट पर ही एकांतवास में चले गए थे और अब दूसरे परीक्षण के बाद कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। ये दल सदस्य अगर आज होने वाली आखिरी जाँच में भी नेगेटिव आते हैं तो अपने दैनिक जीवन में लौट सकते हैं। और अंत में एक नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में उमस के साथ हल्की बौछार पड़ सकती है, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में बरसात की आशंका है, अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में बादल छाए रहेंगे, यहाँ अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी धूप छांव का मौसम रहेगा, अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तूफान के साथ बरसात की आशंका है, अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।